और जीवन का सत्य क्या है, ये भी सबको मान्य है कि सभी कामनाएं आज तक कभी किसी की पूरी नहीं हुई और कुछ कामनाएं सभी की पूरी हुई। इससे ये सिद्ध होता है कि कामना से कामना पूरी नहीं होती, किसी विधान से कामना पूरी होती है। कामना पूर्ति का अर्थ क्या है, सुख का भोग। अपूर्ति का अर्थ क्या है, दुख का भोग। तो सुख दुख जो जीवन में दिखाई देता है कामना पूर्ति अपूर्ति के द्वारा, तो ये जो सुख दुख है ये साधन सामग्री है। साधन सामग्री को भोग सामग्री बना लेना ये हमारी अपनी भूल है। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी आप जिस अर्थ में लेते उसी अर्थ में लो, बहुत ही बड़ा कामी है, अगर उसके हृदय में सही अर्थ में किसी से प्यार हो जाए तो काम नाश हो जाएगा, क्योंकि प्यार में रस है और जब जीवन में रस आ है तो काम नाश हो जाता है, ऐसा नियम है। इसलिए उसको प्यार में बदलो। अब प्यार में कैसे बदला जाए कि अगर बोलो तो प्यार भरी वाणी से बोलो, सुनो तो प्यार भरे कानों से सुनो, देखो तो प्यार भरी आंखों से देखो, यानी आपके हर प्रवृत्ति में प्यार का पुट आ जाए, एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये तरीका है कि वास्तव में प्रेम का दान मानव कर सकता है और प्रेम का पान भगवान कर सकता है। परमात्मा को छोड़कर और कोई प्रेम का पान कर नहीं सकता और मानव को छोड़कर अन्य कोई प्राणी प्रेम का दान नहीं दे सकता, क्योंकि अन्य प्राणी सब भोग्योनी है। तो जैसे पशु पक्षी भोग्योनी है, देवयोनी भी भोग्योनी है, तो भोग्योनी जिसको पिली हुई है वो प्रेम का दान नहीं कर सकता। मानव क्यों कर सकता है कि मानव में विवेक का प्रकाश है, वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सुख के भोगी को कालांतर में भयंकर दुख भोगना पड़ता है। ये जो उसका ज्ञान है, इस ज्ञान के प्रभाव से अगर वो चाहे तो सुख भोग की रुचि को मिटा सकता है। और उसी के साथ साथ एक दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है कि जिस तरह से सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार अगर योगी है तो सुख भोग की रुचि से मुक्त हो जाता है। अब योगी कौन है इस पर अगर विचार किया जाए तो ये मालूम होता है कि जिसे पराश्रय परिश्रम से रहित हर आश्रय और विश्राम के द्वारा जो जीवन है, वह जीवन जिसे पसंद है वो योगी है। योग का उपाय क्या है, हर आश्रय और विश्राम। बताओ हर आश्रय में क्या हमारा पराधीन है क्या, विश्राम में कोई पराधीन है क्या? लेकिन जब तक हम हरे आश्रय नहीं लेते, विश्राम नहीं प्राप्त करते, तब तक भाई योग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पराश्रय और परिश्रम के द्वारा तो परसेवा करें। पराश्रय जब अपने पास हो ना, जैसे वस्तु का आश्रय, व्यक्ति योग्यता का आश्रय, सामर्थ्य का आश्रय, तो इसके द्वारा तो परसेवा करें और अपने लिए हर आश्रय स्वीकार करें। हमें तो प्रभु के ही आश्रित रहना है और किसी का आश्रित नहीं रहना है, क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो सदा सदा हमें अपना सके और हम जिसके साथ रह सकें। परमात्मा की माननी जरूरत क्यों पड़ती है? केवल इसलिए पड़ती है कि सदा सदा रहने वाला कोई साथी नहीं मिलता संसार में, है कोई
जी?
नहीं। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात कि विश्राम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये दो बातें कहीं नहीं सामने
जी।
तो विश्राम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि श्रम के द्वारा शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति का संचय नहीं होता जी।
जी,
और शक्तिहीनता किसी को पसंद नहीं, इसलिए विश्राम की जरूरत है। तो जीवन में बड़ी मूल्यवान तत्व क्या है? हरे आश्रय और विश्राम। अब अगर आपको परमात्मा में आस्था न हो, जीवन के विज्ञान में आस्था न हो, क्योंकि विश्राम सिद्ध होता है विज्ञान से। क्यों? क्योंकि श्रम से शक्तिहीनता होती है, शक्ति प्राप्त तो होती नहीं, और विश्राम से शक्ति संचित होती है। ये विज्ञान है जीवन का। तो विज्ञान से ये बात सिद्ध है कि विश्राम बहुत आवश्यक है, और आस्था से ये बात सिद्ध है खरे आश्रय बहुत आवश्यक है। अगर आज का साधक हरे आश्रय और विश्राम को अपनाए तो बड़ी सुगमता पूर्वक जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है हरे आश्रय और विश्राम से। अब कोई कहे साहब हम तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं होता, मान लो कोई ऐसा निकल आए, ऐसे भी लोग हो सकते हैं नहीं? तो जो ये कहे कि मुझको ईश्वर में विश्वास नहीं होता, तो उससे पूछना चाहिए कि तुमको अपने में विश्वास होता है कि नहीं। तो अगर वो कहे अपने में होता है तो भैया स्वाश्रय और विश्राम ले लो। अगर अपने में विश्वास करते हो तो स्वाश्रय ले लो, विश्राम ले लो। कोई कहे भाई हमको तो अपने का पता ही नहीं, हमें तो अपने में विश्वास नहीं होता, हर में विश्वास नहीं होता। तो भैया तुमको कर्तव्य में विश्वास होता है कि नहीं? क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि दूसरों के द्वारा तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हों? क्या राय है ये? अगर कर्तव्य विश्वास होता है तो भाई तुम धर्म का आश्रय ले लो। कर्तव्य माने धर्म, धर्म माने कर्तव्य। तो धर्म के आश्रय से भी हमें योग की प्राप्ति होती है, और स्वयं के आश्रय से भी हमें योग की प्राप्ति होती है, और हर के आश्रय से भी हमें योग की प्राप्ति होती है। आपको कैसे? कि दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से विद्यमान राग निवृत्त होता है, और अपने अधिकार के त्याग से निमिर राग पैदा नहीं होता। राग रहित होने से योग की प्राप्ति होती है। तो धर्मात्मा होने पर भी हम योगवित हो सकते हैं। और बोले स्वाश्रय, स्वाश्रय का होता है मेरा कुछ, मुझे मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम पराश्रय में तो मेरा है और मुझे कुछ चाहिए ना, होता दो बात
जी।
स्वाश्रय में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इससे भी राग रहित होता है, मनुष्य योग की प्राप्ति होती है। और हर आश्रय से भी राग रहित होता है और योग की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि योग की प्राप्ति हर भाई को, हर बहन को हो सकती है, उससे निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस बात को मान लें कि मुझे योग की प्राप्ति हो सकती है, तो योग की मांग सफल हो जाएगी कि नहीं, बोलो?
हो जाएगी।
उसकी प्राप्ति में संदेह नहीं होता, उसकी मांग सबल होती है। और जब योग की मांग सबल हो जाएगी तो भोग की रुचि नाश नहीं हो जाएगी क्या? देखो, योग की मांग है अग्नि, और भोग की राग भोग की रुचि है काष्ट। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो काष्ट भस्मीभूत हो जाता है कि नहीं? अच्छा, और जब काष्ट भस्मीभूत हो जाता है तो अग्नि अपने आप बुझ जाती है कि नहीं जी? तो योग की मांग भोग की रुचि रूपी काष्ठ को भस्म करके स्वतः पूरी हो जाती है, अर्थात मिट जाती है। तो मांग पूरी हो गई और राग निवृत्त हो गया, उस जीवन में चिर शांति है, जीवन मुक्ति है, भगवत भक्ति है, ऐसा है। इसलिए हमें इस समस्या को अपने सामने रखकर सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो भोग की रुचि को लेकर अभाव में, अशांति में, पराधीनता में, निरसता में जो आबद्ध होते हैं वो न हों। हमारे जीवन से अभाव, पराधीनता, अशांति, निरसता नाश हो जाए। तो कैसे नाश होगी? योग की मांग से। और योग की मांग पूरी होती है। योग की प्राप्ति में कोई भी मानव पराधीन और असमर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि योग अपने से होता है और बिना श्रम के होता है, बिना प्रयत्न के होता है, बिना कोशिश के होता है। अब आप विचार करके देखो कि बिना प्रयत्न के, बिना कोशिश के जो चीज मिलती है उससे भी निराश होना चाहिए क्या? जी
निराश तो नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए ना। जिससे निराश नहीं होंगे तो उसकी मांग जगेगी। अच्छा, अब यहां कठिनाई क्या पड़ती है कि हम लोगों को इस बात में विश्वास नहीं होता कि बिना श्रम के, बिना प्रयत्न के योग हो सकता है। योग के लिए लोग कहते हैं ये करो, वो करो, वो करो। तो करना योग के लिए नहीं है। करना जो होता है वो विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए होता है, और राग निवृत्ति से योग प्राप्त होता है। जैसे विद्यमान राग जो अपने दिखाई देता है किसी प्रकार का, किसी को जो अपना अपना अलग अलग होगा ना, तो जिस राग को विचार से नहीं मिटा सकते उस राग को मर्यादा से पूरा करो। इसीलिए ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ का नंबर बताया गया कि भाई जब तुम योग्यता संपादन करके शारीरिक बौद्धिक विकास के द्वारा कुछ करने के लायक हुए और तुमने देखा कि हमारे मन में भोग की रुचि है जिसको कि हम विचार से नहीं मिटा सके या नहीं सकते हैं, तो एक मर्यादा बना दी कि भाई अमुक अमुक मर्यादा से इस भोग की रुचि को पूरा करो। और पहले विधान बना दिया कि देखो तुम अगर स्त्री की आवश्यकता अनुभव करते हो तो फिर ये सोचो कि स्त्री तुमसे जितना प्यार करे उससे दूना उसको दो। ये विधान बना दिया। तो जब हम दूना देना पड़ेगा, अच्छा बच्चा पैदा करते हो तो अपने से योग्य बनाने का प्रयास करो। ये कानून है। और ने कहा भाई देखो समाज की रोटी खाते हो तो समाज का वो भाग जो है जो कि कमा नहीं सकता, बालक और रोगी, वो उसको खिला के खाओ। अभी कानून लगाया ना जी, खाओ पियो मौज करो ये नहीं कह दिया। बोले धन कमाते हो तो समाज के वो लोग जो कमा नहीं सकते, जैसे बालक है, रोगी है, जैसे कोई सेवा में रत है, जैसे गांधी जी सेवा में रत हुए तो वो कमा के थोड़ी खा सके जी। अच्छा कोई सत्य की खोज में डूबा है वो भी उपार्जन नहीं कर पाता जी। तो महान विरक्त हो, सेवा परायण हो, रोगी हो और बालक हो, तो भाई देखो तुम जो कमाने खाने वाले लोग जो हो पहले इनको खिला के तब खाओ, तो उसमें संयम आएगा कि नहीं जी? अच्छा उसमें भी एक समय बना दिया कि ये नहीं कि सारी जिंदगी ऐसा करो। उनने कि जैसे कि जीवन का 1/4 भाग गुणों के संपादन के लिए रखा गया था, ऐसे ही 1/4 भाग है केवल मर्यादित भोग के लिए, मर्यादित भोग के लिए। और उनने कि 1/4 है केवल सेवा के लिए जो कि तुम्हारा पीरियड चल रहा है, और 1/4 है त्याग के लिए। तो जीवन को 4 भागों में बांटो, गुणों का विकास, मर्यादित भोग, सेवा और त्याग। इन्हीं बातों को बताने के लिए 4 आश्रम बना दिए गए। और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करो, इसी के लिए वर्ण बना दिए गए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि वर्ण आश्रम जो बनाया था ये मर्यादा के यानी अपने राग की निवृत्ति के लिए एक प्रणाली बनाई थी। आज हमसे क्या भूल होती है कि जब भोगने की शक्ति नहीं रहती तब भी भोग की रुचि रहती है। ये हमारी सबसे सोचनीय दशा है कि भोगने की शक्ति तो है नहीं और भोग की रुचि है। तो ऐसी दशा में हमें बहुत ही गंभीरता से धीरज से ये देखना चाहिए कि क्या भोग जीवन का लक्ष्य है। तो पता चलेगा लक्ष्य तो नहीं है, भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है योग। तो हम अगर अपने लक्ष्य को न भूलें और अपने कर्तव्य को न भूलें तो अवश्य सफलता मिलेगी। हमसे गलती क्या होती है कि हम अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और अपने कर्तव्य भी भूल जाते हैं। कर्तव्य उसे नहीं कहते जिसे हम कर नहीं सकते, लक्ष्य उसे नहीं कहते जिसकी उपलब्धि हो नहीं सकती, लक्ष्य उसी को कहते हैं कि जिसकी उपलब्धि होती है, कर्तव्य उसी को कहते हैं जिसे हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेवा कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं, हम प्रेमी हो सकते हैं। क्यों? आप कहें कि साहब हो तो सकते हैं पर हम होते नहीं। होते आपकी अपनी मर्जी हुई ना, जो बात आप कर सकते हैं और न करें उसमें दूसरा आपकी क्या मदद करेगा। सेवा का अर्थ हमारे यहां क्या बताया है? सेवा का अर्थ बताया है मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाओ कि विश्व की सेवा हो गई, और यथास्थ कर दो कि समाज की सेवा हो गई, भलाई का फल छोड़ दो ये अपनी सेवा हो गई, और प्रभु को अपना मानकर स्मृति और प्रियता जगा लो ये प्रभु की सेवा हो गई। तो सेवा मनुष्य विश्व की भी कर सकता है, समाज की भी कर सकता है, अपनी भी कर सकता है, परमात्मा भी कर सकता है। सेवा करने की स्वाधीनता मनुष्य मात्र को प्राप्त है। अगर वो करना ही न चाहे तो वो तो बात अलग है। और सेवा में बाधा क्या है? रुचि पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति तो होती ही है, रुचि पूर्ति बाधा है। अब सोचो आपको रुचि पूर्ति करना है कि सेवा करना है? अगर रुचि पूर्ति करना है तो अंत में रुचि ही शेष रहेगी, पूरी नहीं होगी, तब क्या करोगे? यानी जो होगा ही नहीं उसको करने क्या सोचोगे? यही हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं एक बार रुचि पूर्ति हो गई, फिर दोबारा हो जाए, तिबारा हो जाए, अनेक अनेक बार रुचि पूर्ति हो गई तब भी रुचि को पीछे ही नहीं छोड़ते, अंत में रुचि रह जाती है और पूरी होने की शक्ति रहती नहीं, कितना दुख होगा। तो क्या ये जीवन का चित्र आपको पसंद है कि रुचि बनी रहे, बोलने की रुचि बनी रहे और बोलने की सामर्थ्य न रहे, सुनने की रुचि बनी रहे सुनने की सामर्थ्य न रहे, देखने की रुचि बनी रहे देखने की सामर्थ्य न रहे, स्पर्श करने की रुचि बनी रहे और स्पर्श की सामर्थ्य न रहे? तो सामर्थ्य नहीं है और रुचि है, इससे बढ़कर और कोई जीवन का बुरा समय हो सकता है क्या? क्या रहा है?
नहीं हो सकता,
क्या
नहीं हो सकता?
नहीं हो सकता। अब सोचिए कि रुचि पूर्ति का जीवन में कोई स्थान नहीं है, आवश्यकता पूर्ति का स्थान है। अगर आपको भूख लगी है तो शारीरिक हित की दृष्टि से भोजन कीजिए और भोजन विज्ञान के अनुसार भोजन कीजिए, लेकिन आप भोजन के विज्ञान को भूल जाए, शारीरिक हित को भूल जाए और भोजन का स्वाद लेने के लिए भोजन करें तो क्या होगा? होगा आगे क्या दशा आ जाएगी? आगे दशा आ जाएगी कि भोजन रखा है तो भूख नहीं है, भूखा है तो भोजन नहीं है, ये स्थिति आ जाएगी। और ये स्थिति बचेगी नहीं, आपको रोकने से रुकी नहीं, किसी को रुकती है क्या?
नहीं
है। इसीलिए भाई रुचि पूर्ति के प्रलोभन को छोड़ना ही होगा और मांग पूर्ति में अविचल आस्था करनी होगी। मांग योग की है, रुचि भोग की है, तो भोग की रुचि को विचार से मिटाना ही होगा अथवा मर्यादित भोग से उसके ऊपर उठना ही होगा। तीसरी बार तो नहीं हो सकती, या तो मर्यादित भोग करते हुए भोग से ऊपर उठ जाओ जी, या विचार से रुचि को मिटाओ। अच्छा, और अगर आप रुचि पूर्ति के परिणाम के दुख से अगर आप दुखी हैं, क्योंकि रुचि पूर्ति का परिणाम दुखद जरूर होता है, कोई ऐसी रुचि पूर्ति नहीं है कि उसका परिणाम दुखद ना हो। वो हमको एक हमारे मित्र एक घटना सुना रहे थे, छोटे बच्चे थे वो, उनके बाप थे तहसीलदार, अब तो उनका भी शरीर नहीं रहा, बेचारा का बाप का भी नहीं रहा, तो उनको रबड़ी बहुत अच्छी लगती थी, तो घर से 1 रुपए ले गए, छोटे बच्चे थे, उठा रबड़ी दे दो, तो उस जमाने में 1 रुपए की 4 से 5 से रबड़ी आती है, 4 से तो आती ही थी इस जमाने में, 2 से तो बहुत जमाने तक रही, तो थाल भर के रख के आंगन में रख के बैठे खाने लगे, तो खाते 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 उनको उल्टी आ गई। वो कहते थे उस दिन से आज तक हमको रबड़ी खाने को जी नहीं चाहता, ऐसा है। तो भोग से अरुचि तो होती है, ये प्राकृत नियम ये भी है कि भोग से अरुचि न हो तो ऐसा कभी होता ही नहीं, लेकिन उस अरुचि के प्रभाव को हम नहीं अपनाते, और भोग का आरंभ काल जो सुखद होता है उस सुखद सुखद प्रतीति को पकड़ लेते हैं कि रबड़ी खाई बड़ा मजा आया। तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रुचि पूर्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, मांग पूर्ति जीवन का लक्ष्य है, और रुचि का ही नाम काम है, काम का ही नाम रुचि है। यानी किसी वस्तु का आकर्षण है तो भी काम है, किसी व्यक्ति का आकर्षण है तो भी काम है, किसी परिस्थिति का आकर्षण है तो भी काम है, किसी अवस्था का आकर्षण तो भी काम, काम का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। हमसे गलती क्या होती है कि काम का सीमित अर्थ लेते हैं, एक अंश का अर्थ लेते हैं, 100 न किलो, यहां तक संसार की सत्यता और सुंदरता का भास है, वहां तक काम ही काम है। इसलिए हमें शरीर की संसार की सत्यता पर विचार करना चाहिए, सत्य है कि नहीं है, सुंदरता पर विचार करना चाहिए कि सुंदरता है कि नहीं है। तो न शरीर सत्य, शरीर में सत्यता है न संसार में सत्यता है, न शरीर में सुंदरता है न संसार में सुंदरता है, ये तो हमारे प्रमाद से हमें शरीर और संसार सुंदर मालूम होता है, सत्य मालूम होता है। तो सत्य मालूम होता है, सत्य है क्या, क्या राय, शरीर और संसार सत्य मालूम होता है पर सत्य है क्या,
नहीं सत्य
नहीं है। तो जो सत्य नहीं है उसको सत्य मत मानो, तो सत्य की करो खोज। तो शरीर और संसार से ऊपर उठे बिना सत्य की प्राप्ति होती है क्या जी,
नहीं।
अच्छा, शरीर और संसार से ऊपर उठने के लिए कौन सी चीज अपेक्षित है, इस पर विचार करो जी। शरीर और संसार की वास्तविकता का ज्ञान, शरीर का वास्तविक ज्ञान हो जाए, संसार का वास्तविक ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान का एक बड़ा भारी प्रभाव होता है कि अगर वो असत्य है तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी और सत्य तो प्राप्ति हो जाएगी। एक ज्ञान के दो परिणाम होते हैं। तो अगर आपके आपको अपने ज्ञान के प्रकाश में ये दिखे कि शरीर और संसार सत्य है तो उसकी प्राप्ति हो जानी चाहिए तुमको, और अगर ये अनुभव हो कि सत्य है तो निवृत्ति हो जानी चाहिए। तो ज्ञान से ही काम की निवृत्ति होती है और किसी अन्य प्रकार से निवृत्ति नहीं होती, और जिस ज्ञान से काम की निवृत्ति होती है वो ज्ञान का प्रकाश आपको स्वतः प्राप्त है। देख लीजिए, चाहे जब वो एक कहानी होगी, कल्पना होगी, या घटना होगी, भगवान जाने, एक कोई व्यक्ति किसी युवती को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे। युवती बड़ी समझदार थी, उसने कहा जो गैरों की सूरत में होते हैं सैदा, वो दुनिया में रंजू अलम देखते हैं। और वो देखने वाले भी बड़े समझदार थे, तो उन्होंने जवाब में दे दिया न तुझसे मतलब न सूरत से तेरी, मुसब्बिर की मैं तो कलम देखता हूं। अब शरीर और संसार की सुंदरता को देख करके कारीगर की पर दृष्टि चली जाए जी, तो उसका भोग बनेगा क्या?
नहीं
बनेगा। तो यहां से शुरू करो, और अगर उसमें शरीर में असत्यता और असुंदरता भास हो जाए, देखिए काम जो गलत कहते हैं कि साहब स्त्री को देखकर काम पैदा हो गया कि पुरुष को, स्त्री को ही कहे पुरुष को देखकर काम, सो नहीं होता। काम की उत्पत्ति का कारण होता है अपना अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता। जिसको अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता दिखाई देती है उसी में काम पैदा होता है। तब कहता है अच्छा इसको ऐसे कपड़े पहनाओ, उन्हें ऐसे आभूषण पहनाओ जी। तो जब शरीर सत्य है तब कपड़े भी सत्य मालूम होंगे, आभूषण भी सत्य मालूम होगा, और फिर कोई साथी चाहिए जी तो वो भी मालूम होगा, फिर परिस्थिति चाहिए तो वो भी मालूम होगा। तो शरीर की सत्यता सुंदरता के द्वारा ही सारे संसार की सत्यता और सुंदरता में हम आबद्ध हो जाते हैं। और शरीर कैसा है ये तो आप जान सकते हैं ना जी, देख रहे हैं कि नहीं? जैसा ऊपर दिखता है वैसा भीतर है क्या?
बिल्कुल नहीं है।
अगर आप भीतर की चीज को देखते रहें और ऊपर की चीज के प्रभाव को मिटा दें तब सत्यता रहेगी, तब सुंदरता रहेगी, क्या रहे? न सत्यता रहेगी न सुंदरता रहेगी। तो अगर काम का सर्वांश में नाश करना है तो अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता पर विचार करो। अगर शरीर सत्य और सुंदर न सिद्ध हो तो काम नाश हो जाएगा। एक तो ये मार्ग है, ये तो विचार का मार्ग है। और एक दूसरा मार्ग यह है कि अगर आपको बिना देखे प्रभु में अविचल आस्था श्रद्धा विश्वास हो जाए और उसका प्यार पैदा हो जाए, तो प्यार से भी काम नाश होता है और विचार से भी काम नाश होता है। बाकी और किस प्रकार से काम नाश होता है वो तो अनेक उपाय हैं, ये मूल यही दो उपाय हैं। तो प्यार करना भी आपको आता है और विचार करना भी आपको आता है। जब प्यार करना विचार करना दोनों आता है तो शरीर और संसार की सत्यता सुंदरता नाश हो सकती है, निरस्ता मिट सकती है जी। और जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में शिव है, जो वास्तव में सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम जी, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कल्याण स्वरूप है, जिसमें अनंत सौंदर्य है, तो उसकी मांग से भी काम नाश हो जाता है और संसार की वास्तविकता का अनुभव करने से भी काम नाश हो जाता है, और काम नाश होने से राम मिल जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।